ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। जो भी हमारे डेलीगेट्स हमारे भाई बहने उठकर जा रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि भले आप दो मिनट के लिए बाहर उठकर जाएं, पर वापस आकर बैठे, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपके लिए है। अभी तक जितने सेशन हुए थे आप उसमें सुन रहे थे, पर अभी जो हमारा ये रिफ्लेक्शन सेशन है इसमें हम सभी एंजॉय करेंगे, खुशियों को मनाएंगे, उसका आनंद लेंगे, नाचेंगे भी और गाएंगे भी। तो इसलिए जो इस सेशन का आनंद लेना चाहते हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करती हूँ जो बाहर खड़े हैं वे अंदर आ जाएं। सेशन मिस करेंगे तो आप जब दूसरों से सुनेंगे आपको लगेगा कि हमने इस सेशन को क्यों नहीं अटेंड किया। तो ये सेशन आपके लिए है, तो इसलिए सभी जो बाहर मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं वो सभी से अनुरोध है कि सभी सेशन में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो काफी पीछे तरफ बैठे हुए हमारे डेलीगेट्स भाई बहने हैं, मेरा उनसे अनुरोध है अगर सेशन का आप आनंद लेना चाहते हैं तो जितना समीप बैठेंगे, नजदीक बैठेंगे, आप सेशन को उतना एंजॉय कर पाएंगे। आगे आप देखिए जो भी चेयर्स खाली है, जो उठकर गए शायद आपके लिए चेयर्स खाली करके गए हैं, वो पीछे आकर बैठेंगे, फिर आप आगे की चेयर्स ले लीजिए। आगे बैठने में खुशी मुझे दिखाई दे रही है कि बड़ी खुशी से स्पीड में सब आगे आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इशारा है कि इस सेशन को आप सभी जरूर कॉपरेट करेंगे, इसमें सहभागिता लेंगे सभी। हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम है खुशनुमा जिंदगी। उसके अंतर्गत हम लगभग परसों से शाम से ही बहुत सारे वक्ताओं के अनुभव, अनुभवी गणों की बातें सुनते आ रहे हैं। इन सारी बातों को मुझे विश्वास है आप सभी ने अपने दिल में अपने मन में उतारा होगा। बहुतों ने तो मोबाइल में भी उसको रिकॉर्ड किया है, पर साथ साथ अपने मन और दिल में भी रिकॉर्ड किया होगा। हमारा ये जो रिफ्लेक्शन सेशन है ये बहुत ही एंजॉइंग सेशन है। ये हम और आप सभी एक साथ मिलकर इस सेशन को पूरा करेंगे। इस सेशन का जो थीम है, थीम भी बहुत सुंदर है, जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। व्हेन लाइफ हर्ट्स इट टीचेस। जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो वास्तविकता में वो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो ये सेशन हमारा इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें हम शेयर करेंगे अपनी बातों को, एक दो की बातों को सुनेंगे, कुछ गेम्स भी करेंगे। तो इसलिए जो भी बाहर गए हैं वो भी शीघ्र अति शीघ्र अंदर आ जाए। जो पीछे बैठे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सेशन को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी रेडी हैं सेशन में साथ देने के लिए? रेडी हैं सभी? यस। चलिए, आपके बीच की आवाज आ रही पर साइड की नहीं आ रही है। रेडी है? रेडी है इस साइड? रेडी है सभी? ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में मैंने जैसे कहा कि आप सभी के सहयोग की, कॉपरेशन की जरूरत है, तभी सेशन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा सेशन का थीम, जैसा कि मैंने सुनाया, वेन लाइफ हर्ट्स इट टीचेस। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, उस घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप सभी से फिर हम कुछ बातें पूछेंगे, इसलिए आप रेडी रहिएगा बिल्कुल। वो घटना, वो कहानी शायद आप सबने सुनी होगी, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगी यहां पर। एक बार एक राजा और उसका मंत्री, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, मित्र थे दोनों। दोनों का काफी सारा कार्य साथ साथ ही होता था, साथ उठना बैठना, बातें करना, कारोबार की बातें सारी। दोनों एक दिन नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। राजा को मन किया कि आज मैं मंत्री को, अपने मित्र को, खुद ही फल काट कर खिलाऊं। तो उसने एप्पल को काटा, लेकिन एप्पल काटते काटते चाकू से उंगली कट गई। तो राजा ने मंत्री की सांत्वना लेने के दृष्टिकोण से उसको कहा, रे देखो मेरी उंगली कट गई, कितना खून बह रहा है। मंत्री ने बड़े शांत भाव से कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा अंदर सोचता है, आज मेरी उंगली कटी तो कहता है अच्छा हुआ, कल कोई दुश्मन गर्दन काट देगा तो कहेगा बहुत अच्छा हो गया। राजा को उस पर नाराजगी हुई, गुस्सा आया और उसने उठा के सीधा जेल में डाल दिया उसको। पर उस समय भी उसने कोई उसका रिएक्शन उसको नहीं दिखाई दिया चेहरे पर, कुछ नहीं कहा, जेल में बड़े खुशी से चला गया। कुछ दिन के बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया और शिकार के पीछे पीछे राजा घने जंगल में कहीं भटक गया, अपनी सेना से दूर हो गया। राजा जब वहां भटक गया था, कुछ भील आदिवासी लोगों ने राजा को पकड़ लिया, राजा को बंदी बनाकर ले गए, रात भर बंद रखा। दूसरे दिन वो बहुत बोलता रहा कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, मुझे छोड़ दो, पर वो तो भाषा समझते नहीं थे। उन्होंने बंदी बना के रखा। सुबह राजा को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना और गाजे बाजे के साथ ले जाने लगे। तो राजा ने सोचा, लगता है रात भर में अक्ल इनकी आ गई है और अब मुझे ये छोड़ने जा रहे सम्मान के साथ। पर राजा ने देखा वो तो और घने जंगल में अंदर जा रहे। राजा थोड़ा डर गया कि ले कहां जा रहे मुझे। राजा को एक मंदिर में लेकर गए। राजा समझ गया कि यहाँ मुझे बलि चढ़ाने के लिए लाया गया है। अब जब बलि चढ़ाने की बारी आई, पूजा हुई, तो जो बैगा, जो पूजा करने वाला होता है आदिवासियों का, उसने कहा कि इस बलि को चेक करो कि ये खंडित तो नहीं है। जब उसको चेक किया ऊपर से नीचे, राजा की उंगली कटी हुई दिखी, तो उन्होंने कुछ आपस में बातें की और राजा को जंगल के बाहर जाकर छोड़ दिया। राजा दौड़ता हुआ वापस अपने मंत्री के पास आया और उसको जेल से बाहर निकाला और उससे माफी मांगी और कहा, तुमने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, सही में अच्छा हुआ। आज देखो मेरी उंगली कटी थी तो मेरी गर्दन कटने से बच गई, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम जब जेल में गए तब भी तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया उस बात को और तुमने उसको भी खुशी खुशी स्वीकार किया, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने बहुत सहज भाव से कहा, महाराज बहुत सिंपल सी बात है, आपकी उंगली तो कटी थी इसलिए आप तो खंडित थे, इसलिए छूट गए। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं निश्चित आपके साथ जाता और बलि किसकी चढ़ती, बलि तो मेरी चढ़ जाती। बात छोटी सी है, घटना बहुत छोटी सी हंसी की है, पर यह घटना हमें लाइफ में क्या सिखाती है, अब यह आपके लिए प्रश्न है। यह घटना हमें लाइफ में क्या सिखाती है? यस, हर घटना कल्याणकारी है। लाइफ में जो होता है अच्छा होता है। और कोई कुछ, और कोई लर्निंग है इस घटना से, या सभी यही कहते हैं? यस, साइड में सहमत है इस बात से, और राइट साइड सहमत है? ये घटना हमें यही सिखाती कि लाइफ में जो कुछ होता है सब अच्छा है। लाइफ इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अस्मिता बहन, आप सहमत है?
बिल्कुल बिल्कुल सहमत है हम इस वक्त। मेरा ये माइक नहीं चल रहा है क्या? ये चालू है भैया? ये 100% सही है कि जीवन में जो कुछ होता है उसमें कुछ न कुछ कल्याण अवश्य ही समाया होता है। कई बार जब घटना घटित होती है हमें नहीं समझ में आती है क्या कल्याण है, लेकिन बाद में हमें एहसास हो जाता है कि उसमें क्या कल्याण समाया हुआ है।
तो जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है ना, हम देखते हैं कि कुछ न कुछ हमें सिखाती जरूर है। ठीक,
सही है, बिल्कुल सही। ये परमात्मा के महावाक्य है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है।
तो निश्चित रूप से हमारी सेशन का जो थीम है और पूरी लाइफ का जो थीम है वो यही है कि लाइफ इज ऑलवेज बेनिफिशियल।
हम लाइफ जीवन जीवन बहुत बार लाइफ क्या है, लाइफ में ये हो रहा है, लाइफ में वो हो रहा है, लाइफ की बात करते हैं तो मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर लाइफ है क्या। माधुरी बेन आप बताएंगे कि जीवन क्या है। हम जीवन की इतनी बार बात करते हैं कि जीवन क्या है, तो आप बताएंगे कि जीवन क्या है।
मैं तो बताऊंगी पर मैं चाहती हूँ आप पूछ रहे तो आप जीवन के बारे में क्या सोचते, पहले आप बताएंगे तो फिर हम बताएंगे।
तो अच्छा ही रहेगा कि हम आपस में जीवन के विषय में चर्चा करें। उससे पहले हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कि जीवन क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, बताइए आप। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी थोड़ा सा जो बोलेंगे ना पीछे उसको आगे वाले हम तक पहुंचाए उस बात को।
लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है, बिल्कुल सही है। एक जर्नी है जिसमें हमें परफेक्शन को अटेन करना है, बिल्कुल। इधर से बताइए लाइफ क्या है। हाँ जी लाइफ इज एन एक्ट, वी आर एक्टर्स और लाइफ एक एक्ट है, हम अपना अपना अभिनय अदा कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी जीवन जीने की एक कला है, ओके। हाँ जी लाइफ इज अ स्ट्रगल, इसलिए कहा लाइफ इज अ स्ट्रगल फेस इट, जब जैसी बातें जीवन में आती है तब उन बातों को वैसा ही फेस करते चले। और भी कोई बताना चाहेंगे व्हाट इज लाइफ।
तो फ्रेंड्स
हाँ जी सेल्फ एक्सरसाइज है, ओके। हाँ जी लाइफ जीवन माना ही प्यार है, आप बताइए। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, हाँ जी। लाइफ इज अ ड्रामा, लाइफ के विषय में बहुत सारे कोट हम लोगों ने सुने हुए हैं, कोई कहते लाइफ एक ड्रामा है, कोई कहता लाइफ गेम है, कोई कहते लाइफ जर्नी है। हाँ जी बोलिए। हाँ हम ये कह सकते हैं कि जीवन प्रभु का एक उपहार है, आप कुछ बोलना चाहते हैं।
लाइफ एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें दुख और सुख के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते जाते रहते हैं।
जीवन एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें दुख और सुख सब कुछ आता है। जैसे एक ड्रामा होता है तो उसमें कुछ अच्छे सीन भी होते हैं, कुछ ट्रेजेडी वाली भी सीन होती है। जिस ड्रामा में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा तो वो ड्रामा देखने में मजा नहीं आएगा। वैसे हमारी जीवन रूपी ड्रामा में भी हर कुछ होना चाहिए। हाँ जी आप कुछ बोल रहे हैं।
Life is a sweet journey, not a destination.
Life is a sweet journey,
not a destination.
Towards a destination. भाई ताली बजाइए इनके लिए। आप सबने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब जीवन को इस अंदाज से देखते हैं हम कि जीवन एक स्ट्रगल है तो हम पहले ही तैयार हो जाते हैं कि परेशानियां आने वाली हैं और हमें उसे कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सहमत है, सहमत है। मुस्कुराना इंसान को आता है, मुस्कुराना कोई जीव जंतुओं के लिए नहीं है। और यदि हम जीवन को सदैव एंजॉय करना चाहते हैं, जीवन के हर एक पल को हम बहुत खुशी खुशी बिताना चाहते हैं तो जीवन की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि लाइफ इज अ म्यूजिक, सहमत है आप सभी, कह सकते हैं लाइफ इज अ म्यूजिक, ताकि हम इसे गाते मुस्कुराते गुनगुनाते बहुत एंजॉय करते आगे कदम बढ़ाते चले। कुछ बोल रहे भैया।
हाँ हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है, मैं समझता हूँ कि लाइफ हमारे खुशनुमा जिंदगी है, हम उसको कैसे देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
राइट बात है, जीवन में बातें दुख सुख वाली आती हैं, लेकिन उससे हम क्या महसूस करते हैं वो पूर्णतया हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो क्यों ना एक बहुत सुंदर सा गीत हम सब सुने, तैयार है आप सभी। और इस संगीत को इस पल में आप सभी एंजॉय करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी अर्चना बहन जी से, वो मंच पे आएंगी और बहुत सुंदर सा एक गीत सुनाने वाली है, जिंदगी प्यार का गीत है। और आप सभी भी क्या करेंगे, आप सभी भी साथ साथ गाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे।
जिंदगी हमारा संगीत है, गीत है, तो फिर उस संगीत को अनुभव भी करें हम, सिर्फ कोटेशन में न रह जाए, जीवन संगीत है। तो बहुत सुंदर गीत, उसके भाव को हम सुनेंगे, समझेंगे और साथ साथ क्या करेंगे,
सभी ताली बजाते हुए गीत को
साथ
गाएंगे।
साथ आप भी गाएंगे, यानी कि सिर्फ अर्चना बहन ही गा रही है, ये आपके दिल की आवाज है जो वो यहाँ पर गा रही है, इसलिए आप सभी को साथ देना है। तो रेडी है सभी साथ देने के लिए, रेडी है? ठीक है, ओके।
ओम शांति।
प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
खड़े हो सकते हैं सभी, बहुत देर से बैठे हैं, खड़े होकर ताली बजाइए। जिंदगी गीत है, उसका आनंद लीजिए।
जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिले। ला 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 ला, जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, हर दिल को गाना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना बहन का, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। निश्चित रूप से लाइफ एक संगीत है, गीत है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर अस्मिता बहन, एक बात है, कहते तो है जिंदगी संगीत है, गीत है, आनंद लो, पर प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली लाइफ को हर पल हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
सही है, कारणी अकारणी कई बातों से हम हर्ट हो ही जाते हैं,
इसलिए हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कह तो रहते हैं हर पल में खुशियां हैं, हर पल को जी लो, यही जिंदगी है, पर हम हर पल को जी नहीं पाते हैं। लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस आती है कई बार जो हमें हर्ट करती है, और हमारी खुशी उसी समय गायब हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम उसके एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं, और इसलिए वो सिचुएशंस हमें हर्ट करती हैं, हमें कमजोर करती हैं, और हम उस समय उदास निराश होते, हमारी खुशी गायब हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम हर पल को खुशी से जिए, तो मुझे लगता है अस्मिता बहन हमें लाइफ के हर कंपोनेंट को एक बार समझना होगा, थोड़ा डीप में जाना होगा शायद, तो शायद हम उसे समझ पाएंगे। हमारे जो लाइफ है, हमारे लाइफ के फोर कंपोनेंट्स थे, चार कंपोनेंट है। पहला हमारा लाइफ का कंपोनेंट है वो है हमारा फिजिकल, सेकेंड है हमारा मेंटल, थर्ड है हमारा सोशल, और फोर्थ है स्पिरिचुअल। ये लाइफ के फोर कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों ही हमारे जो लाइफ के पहलू हैं, इन चारों पहलू को जब हम समझेंगे तब शायद हम जीवन में हर पल खुशियां मना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस सेशन में गीत संगीत सब कुछ करेंगे, पर साथ साथ थोड़ा सा इन लाइफ के पहलुओं को थोड़ा सा गहराई से समझने की, वो भी खेल खेल में, स्पीच के रूप में नहीं, खेल खेल में, थोड़ा सा हंसी हंसी में उन बातों को हम सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, यानी हमारा शारीरिक पहलू, अक्सर करके हम लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो खुशियां गायब होती है ना, उसका पहला कारण होता है हमारी कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी। अक्सर हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी कुछ शारीरिक कमियां, कुछ शारीरिक कमजोरियां उनको खुश रहने नहीं देती है, हमेशा उदासी चेहरे पर बनी रहती है, कंपेयर करते रहते हमेशा दूसरों से, इसलिए लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। या फिर कई बार कुछ ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बड़ी बात, कोई बड़ी बीमारी अच्छी खासी खुशी की जिंदगी को भी ग्रहण लगा देती है, और खुश रहने वाला व्यक्ति खुशी उसके लाइफ से गायब हो जाती है। पर मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशंस, ये सारी बातें तो लाइफ में आती और जाती रहती है, परमानेंट तो कोई भी चीज नहीं है। अगर कोई शारीरिक बीमारी आई भी तो हम थोड़ा सा उसकी केयर करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, और थोड़ा सा उसको समझेंगे, ध्यान देंगे, तो ओवरकम कर लेंगे। पर जो शारीरिक कमजोरी, किसी को बचपन से ही कोई कमी मिली है, तो हमें उस कमी को कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी कमी एक्चुअल कमी नहीं होती है। मैं एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करती हूँ, एक कहानी के रूप में, कि कभी भी कोई कमी अगर मुझ में हो तो वो कमी एक्चुअल में कमी नहीं होती है, परंतु किसी बहुत बड़ी सफलता का वो आधार होती है। जैसे कहते हैं ना, सागर में तूफान नहीं आए तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक इसी तरह से जिसे हम कमी समझ रहे हैं उसे दूसरे नजरिए से देखने की आवश्यकता है। छोटी सी घटना सुना रही हूँ, मैंने एक पेपर में, एक मैगजीन के अंदर एक घटना वो पढ़ी थी, एक बच्चे के बारे में, कि एक बच्चा जिसको बचपन से ही कराटे सीखने का बहुत शौक था और उसे ये था कि थोड़ी सी मेरी उम्र बड़ी हो जाए फिर मैं एक अच्छे किसी गुरु की शिक्षा लेकर एक अच्छा मतलब कराटे खिलाड़ी बन जाऊं, एक प्लेयर अच्छा बन जाऊं। और उसने गुरु ढूंढ भी लिया और वो गुरु के पास गया और कहा मुझे कराटे सीखना है तो मैं आपके यहाँ इस गुरुकुल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसको कहा ठीक है आप अगले हफ्ते से ज्वाइन करो। पर उसको हम कुछ कहेंगे बैड लक कहेंगे कुछ लोग, पर मैं कहूंगी कि नहीं उसमें भी कोई कल्याण था। उस बच्चे के एक एक्सीडेंट में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसका राइट हैंड कट गया, पूरा कंधे से ही निकल गया। काफी समय ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा थोड़ा ठीक हुआ पर उसके अंदर वो जिद थी कि मुझे कराटे सीखना है। वो ठीक हुआ, अपने गुरु के पास फिर गुरुकुल गया और कहा कि मुझे कराटे सीखना है। उसके गुरु ने उसको ऊपर से नीचे एक बार देखा, राइट हैंड तो है नहीं और उत्साह कितना कि मुझे कराटे सीखना है। उसने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगा तुम्हें, पर मेरी एक शर्त है, अगर शर्त मंजूर है तो मैं सिखाऊंगा। गुरु ने उसके आगे शर्त रखी कि मैं जो भी सिखाऊंगा तुम्हें प्रश्न नहीं करना है, जो सिखाऊंगा सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है। उसने कहा मुझे शर्त मंजूर है, आप जो सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। गुरु ने उसको एक ट्रिक सिखाई और कहा जाओ ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिस करो और लगातार करते जाना करते जाना। वो प्रैक्टिस करता रहा, एक दिन दो दिन सात दिन हो गए वो उसी ट्रिक की प्रैक्टिस करता रहा। एक किक लगाना सिखाया उन्होंने और उसकी प्रैक्टिस करता रहा। एक हफ्ते के बाद उसको थोड़ा विचार चढ़ने लगा कि गुरु से जाकर कहूं कुछ और भी सिखाओ, पर उसे याद आया गुरु ने कहा है मुझे कभी भी तुम कोई बात प्रश्न के रूप में नहीं कहोगे, कुछ पूछोगे नहीं, मैं जो कहूं वही करना है। फिर भी उसने कहा गुरु मैंने प्रैक्टिस कर ली है और परफेक्ट हो गया हूं, अब मुझे दूसरी ट्रिक आप सिखा सकते हैं। गुरु ने बहुत सिंपल वे में कहा कि जाओ और प्रैक्टिस करो। उसने फिर प्रैक्टिस की, एक महीना लगातार प्रैक्टिस करता रहा। उसके साथ वाले बच्चे बहुत कुछ सीख गए पर वो बच्चा एक ही ट्रिक की प्रैक्टिस करता रहा। एक महीना, छह महीने बीत गए पर एक ही ट्रिक, वो जितनी बार गुरु के पास जाता गुरु ने कहा बस प्रैक्टिस करो जाकर। कॉम्पिटिशन्स आए और कॉम्पिटिशन में गुरु ने उस बच्चे का नाम लिखा कि गुरुकुल से इस उम्र के बच्चों के कॉम्पिटिशन में हमारा ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा। अब उस बच्चे को अंदर फील होने लगा शायद गुरु मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो मुझे सिखाना नहीं चाहते हैं, ये मेरी कमी है, ये मुझे दर्शाना चाहते इसलिए मेरा नाम लिखा है। पर गुरु ने कहा कि तुम्हें खेल में जाना है, भाग लेना है। खेल में आया, फर्स्ट राउंड था, सामने प्लेयर खड़ा था, उसने एक ही किक सीखा था, उस एक ट्रिक को उसने अप्लाई किया और थोड़ी देर में वो राउंड जीत गया। वो फर्स्ट राउंड जीता, सेकंड राउंड अब उसे डर लगने लगा कि ये तो चलो भाग्य से, जिसको कहते हैं ना, तुक्का लग गया एक प्रकार से और मैं जीत गया, पर सेकंड राउंड तो नहीं जीतूंगा। तो सेकंड राउंड के लिए वो गया, सेकंड राउंड भी जीत गया थोड़ी देर में। अब फाइनल राउंड था, वो गुरु के पास गया और कहा मैं फाइनल राउंड नहीं खेलूंगा क्योंकि एक बार दो बार भाग्य साथ दे सकता है, बार बार भाग्य साथ नहीं देता है। उन्होंने कहा जाओ मेरा आदेश है तुम तीसरा राउंड भी खेलने के लिए जाओ। तीसरा राउंड भी थोड़ी देर में वो जीत लिया और वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। अब वो सीधा गुरु के पैर आकर पकड़े उसने कि आपने क्या चमत्कार किया है, जादू किया है जो मैं ये गोल्ड मेडल जीत पाया जबकि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, एक ही ट्रिक सिखाई है। तो गुरु ने कहा मैंने कहा था प्रश्न नहीं करना पर आज चुके तुम उसे पूरा सीख चुके हो तो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने उसे बताया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कमजोरी कभी कमजोरी नहीं होती, बहुत बड़ी ताकत होती है। गुरु ने उसे बताया कि देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई और तुमने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि उस ट्रिक में इतने परफेक्ट हो गए कि तुम्हारी एक किक के सामने भी, सामने कितना भी अच्छा प्लेयर हो पर वो टिक नहीं सकता, इतनी पावरफुल तुम्हारी पहली किक होती है। जैसे प्लेयर गिर जाता है नीचे अब उसे उठना है, वो 10 तक गिनती होते तक तुम्हें उसे उठना है, तो उठने के लिए उसे तुम्हारा राइट हैंड पकड़ना होगा तब वो उठ के तुम्हें गिरा सकता था। पर वो खिलाड़ी जो नीचे गिरा है जब भी हाथ ऊपर करता है तुम्हारा हाथ पकड़ने, तुम्हारा राइट हैंड तो है ही नहीं तो उसके हाथ में तो कुछ आता ही नहीं है पकड़ने के लिए, इसलिए वो उठ ही नहीं पाता है। तो गुरु ने क्या किया, उसकी कमजोरी को कामयाबी में बदल दिया। अ अगर हमारी भी कोई शारीरिक कमी और कमजोरी है तो उसे कमजोरी नहीं, उसे गॉड गिफ्ट समझिए। कोई बीमारी आई है तो सोचिए कि मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है तो मुझे आराम देने के लिए ये आई हुई है। आप किस रीति उसे देखते हैं, आपका नजरिया उसको कमजोरी नहीं कामयाबी बना सकता है। आप में कोई ऐसा है, कोई ऐसे बैठे हैं जिनके पास ऐसा प्रैक्टिकल एक अनुभव हो जीवन का कि हाँ मेरे लाइफ में भी ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आई और मैंने उसको ओवरकम किया? हमारे गेस्ट भाई बहने, यस आइए आप शेयर करेंगे, एक मिनट में है ना माइक देंगे उनको। थोड़ा सा आगे आ जाइए, निकल के सामने आ जाइए ताकि आपको देख सके सभी। अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए, और एक मिनट में आपको अनुभव सुनाना कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ओवरकम किया आपने।
मेरा नाम रजनी है, मैं पानीपत।
पास में कीजिए,
मेरा
फेस उधर कीजिए। हाँ
ओम शांति, मेरा नाम रजनी है, मैं पानीपत सेंटर से आई हूँ। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये तो मेरे लिए एक परिस्थिति आई है और मेरे को ऐसे पार करना है। थोड़ी देर के लिए मुझे आया था, मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैं ठीक हो गई। अभी भी मुझे है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ आई हूँ तो बिल्कुल ही मेरे को सही लग रहा है। यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बाबा ने मेरा सब दूर कर दिया। ओम शांति।
आप सभी ने सुना, समझ में आया आपको कि बीमारी या कोई बात आती है लाइफ में पर हम उसको ओवरकम करते हैं तो उतनी खुशी मिलती है। और कोई है आप में से? यस आइए जल्दी जल्दी आगे आएंगे, थोड़ा सा ना जल्दी से आ जाइए। और इधर कोई है ऐसा जिनके पास ऐसा अनुभव हो कि ऐसी कोई कमजोरी थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई और मैंने उसको ओवरकम किया? एक मिनट में सुनाएंगे, ठीक है।
ओम शांति। मेरे ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो भगवान दास में नहीं, मत नहीं आ
रही। माइक सीधा पकड़िए ताकि सबको सुनाई दे।
अच्छा जी, मेरे ब्रेन ट्यूमर हुआ था और मैं नहीं, मत नहीं आ रही। मेरा ऑपरेशन हुआ और बाबा की दया से मैं उसकी शरण में, ऑपरेशन होने के बाद इनकी शरण में आया और मैं ठीक हूँ।
अच्छा, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम था, ट्यूमर था?
ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर।
अच्छा, ट्यूमर था।
हाँ जी।
पर भगवान को याद किया तो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया।
मेरे को भी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था, दो फ्रैक्चर थे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि आप बिल्कुल भी आप चलेंगी नहीं। लेकिन मैंने अपने को यही परमात्मा को याद करके मैंने कहा नहीं, मैं चल के दिखाऊंगी, और मैं चली और बिल्कुल एक महीने में बिल्कुल ठीक हो गई।
बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ लास्ट ये, ठीक है लास्ट।
ये अनुभव मेरा नहीं लेकिन मेरा ही है, क्योंकि ये मेरे बेटे के साथ हुआ। ही वॉज बॉर्न डेफ, जब हमें पता चला तो वो सिर्फ 11 महीने का था, वो हियरिंग इम्पेयर्ड था, बचपन से उसको बिल्कुल भी, पैदाइश से ही उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। अब ये हमारे लिए तो पूरे टूट जाने की स्थिति थी, लेकिन घर में क्योंकि इन लॉज थे उन लोगों का दुख मुझसे भी बड़ा था, तो पता नहीं शायद ईश्वर ने सपोर्ट किया और मन में एक बात आई कि अगर ईश्वर ने मुझे ये दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मंशा होगी उसकी, कुछ सिखाने की। और वाकई में इस बच्चे के साथ रह करके मैंने जो सीखा वो शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं सीखा होता अगर ये नहीं आता। तो इसको एक मैंने अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज की तरह लिया, और आज मेरा बेटा IIT चेन्नई में पढ़ता है, नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल स्कूल में।
बहुत बढ़िया। कोई भी सिचुएशन आती है उसको अपॉर्चुनिटी समझे तो जीवन में हमें सिखाती है। तो जो हमारा टॉपिक है ना, यस एक मिनट है ना लास्ट ये, फिर आगे भी। हाँ सुनाइए, आइए भाई साहब आप आइए, आगे और भी चांस मिलेगा सुनाने का।
हेलो, ओम शांति। मेरे अनुभव को चाहे छोटी सी घटना समझे लेकिन बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं अमोलक सिंह भट्टी चंडीगढ़ से फर्स्ट टाइम ही यहाँ आने का मौका मिला है। हमारे कविता दीदी जो चंडीगढ़ के इंचार्ज जो हमारे साथ आए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50 पीपल वी आर कमिंग टुगेदर, और भी ग्रुप्स हैं। और मैं आपको सच बताऊं, हमारे घर में अभी इस योग में मैं ही अकेला आ रहा हूँ, बाकी घर वालों का, मेरी पत्नी का या बेटी का इतना ध्यान नहीं है, ना वो रेगुलर हैं, तो मैं ये चीज बता के भी नहीं आया कि मैंने ऐसे जाना है। मैंने कहा कोई मेरा कैंप है, मैंने कहीं जाना है, कोई उनको पता है ये मेडिटेशन वगैरह के लिए जाता रहता है। तो जिस दिन आना था
भाई साहब, शॉर्ट में सुनाएंगे ना, क्योंकि समय कम है हमारे पास।
तो मुझे कविता दीदी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि 7:20 पर आपने स्टेशन पर गाड़ी पे बैठ जाना है, तो कुछ ऐसी घर में जैसे सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो आई कुड नॉट स्टार्ट टिल 7 o'clock। 20 मिनट रह गए थे और मैं सोच रहा था कि मेरी टिकट भी चाहे मेरी जेब में है, मैं अब गाड़ी नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं घर से चल पड़ा, मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन क्योंकि गरीब रथ एक बड़ी लंबी और जर्नी की ट्रेन है, टाइम से उसने आना था। तो मैं जब रास्ते में एक जगह वो लाइट सिग्नल आता है, तो मैंने फोन से पूछा, मैंने कहा गाड़ी कितने बजे चलेगी, आप लोग बैठ गए? कहते हैं हाँ भाई साहब 7:40 पे चलेगी। बोलिए ओम शांति। 7:20 की जगह गाड़ी का टाइम ही 7:40 हो गया, क्योंकि ये कुछ चेंज हुई थी, कहते टाइमिंग चेंज हुए हैं। तो मैं बिल्कुल 10 मिनट पहले पहुंच गया, अपनी सीट पे बैठ गया और आज आपके साथ हूं और ये एंजॉय कर रहा हूं खूबसूरत खुशनुमा जिंदगी। तो ये बाबा की कृपा है। वो कहते हैं, एक छोटा सा शेर सुना के मैं आपके सामने
अभी अगले इसमें शेयर करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए।
खलूसे दिल से हो सजदा, क्योंकि हम बाबा के यहाँ।
भाई साहब आपका टाइम पूरा हो गया, प्लीज दूसरे को भी चांस देंगे ना।
एक शेर बस यही, इस घटना से रिलेटेड है। कहते हैं खलूसे दिल से हो सजदा, तो उस सजदे का क्या कहना, काबा सरक जाता है जहाँ रख दी जबी हमने। ये बाबा की कृपा है और आप सब भाइयों के साथ, जो बहनों के साथ फ्रीक्वेंसी है उसका असर है। ओम शांति।
ये माइक इतनी प्यारी चीज है ना कि हाथ में आने से किसी को भी छोड़ने का मन नहीं करता है। जी दो चार सेंटेंस बोलेंगी, ठीक है दीजिए। इस सिचुएशन को भी एंजॉय कीजिए आप सब। ओम शांति। बोलिए आप, बोलिए।
आ रहा हूँ, उसको सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैं जब भी बाबा के ध्यान कक्ष में जाता हूँ तो 1-1.5 मिनट बाद बाबा सामने से उनका नस नीचे होता है, मैं स्पष्ट देखता हूँ। और मैं अनेकों बार अनुभव किया है मैंने कि जब भी मैं शारीरिक दुविधा में आता हूँ, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कह के ब्रह्मा बाबा का ध्यान करता हूँ, तो कुछ ही समय बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। ओम शांति।
भगवान को याद करने से ही सबका ये अनुभव है, मतलब
मैं बोलूँगा
उनको याद करने से हमें शक्ति मिलती है।
मैं बोलूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा शिव बाबा का नाम रहेगा। आप बोलेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा
माइक
शिव बाबा का नाम रहेगा।
देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है? आप सभी का डायरी पेन है, सभी ने यह अनुभव सुना है ना, भगवान को याद किया तो शक्ति मिली और हमने ओवरकम किया। आप सभी अपनी डायरी में एक शब्द लिखिए पीछे, इलनेस, ILLNESS, इलनेस, ILLNESS, इलनेस, ठीक है? आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आपको इसमें से सिर्फ एक लेटर हटाना है और ठीक इसका अपोजिट वर्ड तैयार करना है। इलनेस, ILLNESS, एक लेटर हटाना है और अपोजिट वर्ड तैयार करना है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किस किस ने किया हाथ उठा लीजिए, ठीक? यस, क्या किया? आपको जो लेटर आपने वर्ड लिखा है ना, वर्ड जो लिखा ILLNESS, इसमें से एक लेटर हटाना है और उसका अपोजिट वर्ड तैयार करना है।
यस, इन्होंने राइट बताया, आपको आई हटाना है सिर और डब्ल्यू ई जोड़ना है तो वेलनेस हो जाएगा। वेलनेस यानी हेल्दी। सिर्फ एक लेटर हटाया आई और डब्ल्यू ई वी जोड़ दिया, यानी कहने का भाव आज तक आप समस्याओं से अकेले, आई माना मैं, अकेले लड़ रहे थे। अब जब आप भगवान के घर में आए, यहाँ से आप भगवान को साथी बनाकर जाइए, तो वी हो गया, मैं और मेरा भगवान। तो अब सारी बीमारियों से, सारी समस्याओं से लड़ना क्या हो गया, क्या हो गया, आसान हो गया। तो आप अकेले, अब कौन कौन अकेला है, अब भगवान के साथ कौन कौन है, सब है। तो आपको बधाई, भगवान आपका साथी है। हम नेक्स्ट इसके पहलू की ओर चलते हैं, हमारा शारीरिक के बाद है मानसिक पहलू, ठीक है। मैं अस्मिता बहन से कहूंगी कि वो इसे थोड़ा सा हमें डीप में ले जाकर इसको एक्सप्लेन करें।
तो आप सबने सुना कि शारीरिक बीमारियां हैं, लेकिन मन से यदि हम ताकतवर हैं तो हमें बीमारियों को ओवरकम करना आसान हो जाता है। भल तन से बूढ़े हो जाए, लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है मन से कभी बूढ़े नहीं होना है। भले शरीर बीमार है, लेकिन मन शरीर के बीमार होने के बावजूद भी मन खुश रह सकता है। इसीलिए कहा पेन इज मैंडेटरी। दर्द हो रहा है, कुछ भी कारण है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोरो इज ऑप्शनल। शरीर में तकलीफ है, दर्द है, परंतु हम दुखी हैं या नहीं है वो हमारे हाथ में है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण सुनाना चाहूंगी। आप सबने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का नाम। किस किस ने सुना है? हाँ जी, मैं उनके जीवन वृतांत की एक बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, आप सबको मालूम होगा शायद, वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल में वॉलीबॉल प्लेयर थी। ट्रेन में सफर कर रही थी लखनऊ से दिल्ली, और उसी ट्रेन में कुछ चोर लोग घुस आए और उसने एक चेन पहना हुआ था और उन्होंने चाहा उस चेन को उससे छीन कर ले जाए, परंतु जैसे ही अरुणिमा ने अपोज किया तो उन चोरों ने उसको चलती ट्रेन से बाहर धकेलने की कोशिश की और बाहर धकेल दिया। चलती ट्रेन से जैसे ही अरुणिमा बाहर नीचे गिरी तो आगे और एक दूसरी ट्रेन भी दूसरी दिशा से आ रही थी, और इतने में पटरी के नीचे उसकी बाएं पैर को गहरा चोट लगा और उसके बाएं पैर कट गई। रात भर वो चिल्लाती रही कि कोई उसे बचाए, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वहां से 50 ट्रेन इधर उधर गुजर चुकी थी, फिर भी उसने जीवन जीने का हौसला बनाए रखा था। और जब सुबह हुई, लोगों को पता चला, तो उसको एम्स में भर्ती किया गया और उसका इलाज चला। महीनों तक वो मौत से लड़ती रही। उसको जीवित रखने के लिए उसका बाया पैर डॉक्टर्स को काटना पड़ा, और डॉक्टर्स ने कहा उसे कि आपको अभी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल क्या करना पड़ेगा, आपको आराम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने ये सलाह दी, और उसके जो परिवारजन थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उनकी नजर में वो क्या बन चुकी थी, वो लाचार बन चुकी थी, वो विकलांग बन चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के मन में क्या था, उसने अपने मन के हौसले को कम होने नहीं दिया। उसने लोगों की नजर में अपने आप को लाचार साबित करना नहीं चाहा। उसने जीवन में एक बात ठान ली जो सोचा नहीं जा सकता है। ऐसी हालात में भी उसने ठान ली कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 21 मई 2013 को वो अपने सपने को साकार कर पाई। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो उस पर पहुंच पाई। क्या कहेंगे इसे? मन की शक्ति। यदि आप मन से शक्तिशाली हैं, तो तन कितना ही बीमार क्यों न हो, आप उसे ओवरकम करते आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे, इट इज ऑन पावर ऑफ थॉट। मैं माधुरी बेन से रिक्वेस्ट करती हूँ आप वो वीडियो प्ले करेंगे। आप इसमें देखेंगे एक व्यक्ति जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया। भैया इसका पासवर्ड। उनका प्लेन क्रैश हो गया, बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हो गए और उनको अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि आप जिंदगी भर बेजान से पड़े रहोगे। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि उनके मन के विचार क्या थे और उनके मन के विचारों का क्या असर हुआ और प्रैक्टिकली उनका भविष्य क्या बना। आप इस वीडियो के जरिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज प्राप्त करेंगे, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। इसलिए हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि यदि आपका मन शक्तिशाली है तो तन की कोई भी बीमारी आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में रोक नहीं डाल सकती है। इसलिए फिजिकल तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन फिजिकल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मेंटल एस्पेक्ट है। इसलिए मन हमारा सकारात्मक सोचे, मन हमारी शक्तिशाली स्थिति में रहे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, बहुत ही छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिए और इसमें जो मैसेज कन्वे किया गया है इसे समझने की कोशिश करिए। आया
पेशा के लिए बदल के रख दी, मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया, मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे, मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पलके झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलके ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने दो पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है।
आप सभी रिपीट करेंगे इस बात को,
मैसेज को रिपीट करिए, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। इसलिए हमें हमारे सोच को सदैव बहुत सकारात्मक रखना है। अब हम चलते हैं आगे तीसरे एस्पेक्ट पर। माधुरी बेन आप हमें सुनाएंगे कि सोशल एस्पेक्ट में बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती है, कैसे उन बातों का सामना किया जाए खुशी खुशी से।
हमारा सोशल एस्पेक्ट जो है यानी सामाजिक पहलू, जिसमें हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते, ये सब बातें आती हैं। और सबसे ज्यादा समस्या आज कहाँ है? हमारे सोशल एस्पेक्ट में है। हमारी खुशियां गायब करने वाला ये सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है। इसको हम समझेंगे खेल से, तो मुझे 10 खेलने के लिए अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है, 6 बहने 6 भाई, ठीक है, 6 भाई एक साइड से आएंगे और 6 बहने, हाँ यस, 12 लोग चाहिए, 6 बहने और 6 भाई, और हमारे गाइड भाई पीछे प्रयास भाई और साथ में भाई,
एक बहन चाहिए, एक बहन चाहिए,
बहने एक साइड आ जाए, इधर बहने इधर आ जाए, भाई उधर,
हो गया हो गया, ये
ठीक है, आप सब ये सोचिए कि आप इनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, हमारा जो इस साइड ये बीच का पार्टीशन है, ये मेरी लेफ्ट साइड जो है हमारी बहनों को सपोर्ट करेंगे और हमारा राइट साइड जो है वो भाइयों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है,
2 3 4 5 6 आप में से 3 जने कोई जाएंगे तो क्या है,
आप छोड़ जाइए,
मन चिंता बड़ा नहीं है कि हम इतने जनों का एकोमोडेट करें,
भाई कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक कोई कम हो जाइए,
एक जना कम हो जाइए, कोई भी
आप बीच है ना, ठीक है, देखिए अब इनको क्या करना, आप पीछे देख रहे बलून रखे हुए हैं, एक बहुत सुंदर गेम कि जो हमारा सोशल एस्पेक्ट उसको हम समझेंगे, इनको क्या करना है, ये ग्रुप आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये ग्रुप आपको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, आप में से 1st 2nd 3rd आप डिसाइड कर लो, आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप को यहाँ पीछे बैलून रखे हुए, ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे सामने से, यहाँ सभी खड़े रहेंगे, एक व्यक्ति जाएगा बैलून लेकर आएगा, फिर जो दूसरा अपना पार्टनर है उसके बीच में अपनी पीठ के पीछे लगाएगा, दूसरा भी सामने ऐसे, मतलब 2 का पेयर बन गया लेकिन दोनों के बीच बैलून है, ठीक है, फिर वो दोनों जाएंगे एक बैलून लाएंगे, फिर तीसरे को साथी बना लेंगे, फिर एक बैलून लाएंगे, फिर चौथे को साथी, ऐसे हाँ चेन बनाना है, पर एक एक करके, हाँ कौन पहले करता है चेन कंप्लीट, पहले कौन करता है, ठीक है, तो आपको हम लाइन पे खड़ा करते हैं,
सबको क्लियर है क्या करना है,
देखिए आप यहाँ ग्रुप में खड़े हैं, ठीक है, एक कोई भी आप लाइन बना लीजिए पहले, ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो दौड़ कर जाएगा बलून लेकर आएगा, अपने पीठ के पीछे रखेगा और दूसरा व्यक्ति उससे सट जाएगा, हाथ नहीं लगाना है, दोनों के आपका फ्रंट आपका बैक उसके बीच में बलून को रखना है, फिर आप दोनों जाएंगे बिना बलून गिराए, बलून लाएंगे फिर तीसरे को साथी बनाकर जाएंगे, 3 हो गए, फिर एक बलून लाएंगे 4, ऐसे 8 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए, गिर गए तो आउट आउट,
यहाँ लाइन,
हाँ यहाँ लाइन लगाइए,
यहाँ लाइन करके खड़े हो जाए,
चप्पल नीचे वो बताएंगे,
ऐसे लाइन से खड़े हो जाइए, ऐसे
सीधी लाइन बनाइए, सीधी लाइन,
तो आप तो नजदीक आ गए ना, ऐसे ऐसे लाइन बनाइए,
आप लोग हाँ दोनों के, हाँ 2 के 3 हाँ ऐसे पीछे जी, पीछे पीछ पीछ, हाँ पहले की पेट दूसरे का पेट, पीछे पीछे हो जाइए, लाइन ऐसे सीधी कीजिए ना, लाइन सीधी लेके आएंगे ना, हाँ
ये ऐसे खड़े हो रहे हैं तो वो भी वैसे खड़े होंगे ना,
हाँ भाई तो इनको अच्छा ना, सीधा खड़े हो जाइए, सीधा खड़े हो जाइए, सीधा खड़े हो जाइए,
हाँ और पीछे पीछे उनके बराबर, हाँ बस आप में से ये जाएंगी बलून लेके आएंगे, फिर बैक टू बैक आप जाएंगे,
पहला वाला तो हाथ में लाएंगे
माधुरी बहन, हाँ इनको ना इनको फिर से क्लियर कराइए, तो फिर मिठा माधुरी बहन बोले नीचे डालो,
क्योंकि ऐसे बीच में ऐसे से नीचे से करना चाहते हैं, हम यहाँ से पकड़ा
से उड़ भी रहे हैं ना,
हम पकड़ा देंगे,
ये सब उड़ रहे हैं, आप शुरू करा दो क्योंकि
एक एक पकड़ाना है बस,
एक बज गया, शुरू करा दो आप,
ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी आपको स्टार्ट बोलेंगे तो आना है, बैलून लेके जाना है और पेयर बना के आना है। ठीक है भाई, रेडी? आप पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ इधर। हाँ, आप दोनों हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, बस एक बैलून पकड़ाना है उनको। ठीक है, करें स्टार्ट? टीम रेडी है दोनों? ठीक है, स्टार्ट। दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, बैलून लेके जाइए। हाँ, आप दोनों के बीच में बैलून रखेंगे और वापस आएंगे।
बैक टू बैक, बैक टू बैक,
हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
अच्छा चलो छोड़ो,
हाथ नहीं पकड़ना, ऐसे हाथ नहीं पकड़ना बहने, हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाथ नहीं पकड़ना, हाथ नहीं पकड़ना, हाथ छोड़ो। हाँ, हाथ दूर, हाथ दूर।
चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप। चलो चलो बैक, बैक
मुड़ के जाइए। बहने आगे हैं, शिव शक्तियाँ है ना,
संभल के
उसको घूम के आना। ठीक है, वो राउंड जो स्टैंड रखा है उसको घुमा के आना है।
पट गया,
फूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दे दीजिए, दे दीजिए। हाथ, हाथ छोड़ना है, हाथ नहीं लगाना है। देखा इस गेम में एक बात की बैलून बहुत डेलिकेट चीज है ना, बीच में भाइयों का फूट गया, बहनों का उड़ गया, छूट गया, पर ठीक है, दूध भात चलता है ना, बहने हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, जीत लिया उन्होंने, पर हम कितना ध्यान से उसको, हम भाइयों को देख रहे थे, कितना ध्यान से पकड़ के, कितना केयरफुली, कितना सिंसियरली उसको कर रहे थे। कहने का भाव, जो हमारा सोशल एस्पेक्ट है ना, हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध उतनी ही डेलिकेट चीज है, बहुत नाजुक चीज है, पर हम उसे कैसे यूज करते हैं, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया कर दिया। कहने का भाव, रिलेशंस बहुत नाजुक चीज है, संबंध उसे संभालिए, कुछ प्यार से, कुछ सहन करके, कुछ समा के, क्योंकि रिश्ते तोड़ना तो बहुत आसान है, पर रिश्ते जोड़ना और रिश्ते बनाकर कायम रखना बहुत मुश्किल है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हमारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत प्यार से, थोड़ा समा कर, और एक बात, कोई बात हो भी जाती है तो उसको क्या करो, कोई बात नहीं, बातें तो आती है और जाती है, जीवन बहुत कीमती है, जीवन का एक एक पल कीमती है, हम किसी से नाराजगी, किसी से मतभेद, लड़ाई झगड़ा करके जिंदगी के पल को यूं ही गवाए नहीं, हम जिंदगी के हर पल का आनंद ले, उसके लिए हमें ये सोचना जरूरी है कि जो कुछ भी है अच्छा है, जो भी है जैसा भी है अच्छा है, हर चीज में पॉजिटिविटी को देखिए। मैं एक बात जरूर यहाँ पर उदाहरण के रूप में सुनाना चाहूंगी, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके हम फोटो देखते हैं और आज जिनके हिस्ट्री हमने सुनी, किस तरह से संबंधों को बनाए रखते थे और पॉजिटिव रीति देखते थे, जब बाबा साकार में थे तब की बात थी, कि एक न्यूज पेपर जिसके अंदर संस्था के बारे में, बाबा के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बहुत गलत गलत बातें लगभग हर दिन छापी जाती थी, तो हमारे जो इस संस्था के कुछ ऐसे भाई थे जो ब्रह्मा बाबा के काफी नजदीक थे, उन्होंने कहा, बाबा ये तो हमारी बदनामी कर रहे हैं, हमें इसके विपरीत एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर केस करना चाहिए। पर बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, उस बच्चे को बहुत प्यार से थैंक्स का पत्र लिखो। तो उन्होंने कहा, बाबा वो इतनी बदनामी कर रहा है, हम थैंक्स का क्या पत्र लिखे कि वो हमारी बदनामी कर रहा है। बाबा ने कहा, नहीं, बच्चे को लिखो कि बच्चे तुमने जो सेवा की है वो आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि उस समय कोई भी न्यूज़पेपर में संस्था के बारे में कुछ लिखने के लिए तैयार नहीं होता था, पर उसने जो भी लिखा, एटलीस्ट पूरे विश्व में ये तो पता चल गया कि ब्रह्मा कुमारीज या ओम मंडली कोई संस्था भारत में है जो बहुत बड़ा कोई कार्य करती है। और सही में उसको पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़कर धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। समाज से, संबंधों से कई बार बातें ऐसी आती हैं, पर हम उसे जिस नजरिए से देखेंगे तभी हम उसमें से पॉजिटिविटी को ले सकते हैं। तो लाइफ में जो भी होता है उसको क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है, आया गया, जो पल है उसको एंजॉय करो। तो आप इस पल को एंजॉय करना चाहते हैं सभी, तो जो ये मंत्र सीखना चाहते हैं कि आज ये पल मेरे जीवन का बहुत कीमती पल है, मैं इस पल को एंजॉय करूं, वो खड़े हो जाए सभी, ठीक है, सिर्फ खड़े नहीं होना, आप सबको हमारा साथ देना है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं कोई यहाँ सेशन में, छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे थोड़ा स्टेज पे आ जाए, आइए छोटे बच्चे स्टेज पर आ जाए, आप सब बड़े बच्चे, ठीक है, इसलिए नीचे रहेंगे, आइए इस साइड आ जाओ बेटा, इस साइड आओ, हाँ इस साइड आओ सभी, छोटे बच्चे आ जाइए, आ जाइए, ले आए, बड़े सभी नीचे रहेंगे, बच्चे सिर्फ ऊपर आएंगे, ठीक है। एक बहुत सुंदर गीत मैं यहाँ पे बजा रही हूँ, हम सभी को इस गीत में इस पल का आनंद लेना है, तो खूब खुशी में नाचना है भाई, आनंद को, खुशी को हम व्यक्त कैसे करते हैं, नृत्य के द्वारा। मैं ये नहीं कहूंगी क्लासिकल करो, आपको जैसा आता है, आज ये भान भूल जाओ कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं उम्र वाला हूँ, पोस्ट वाला हूँ, बच्चे बन जाइए और इस पल को एंजॉय करिए। करेंगे सभी, तो आपके हाथ में जो रखा है ना, मोबाइल वगैरह जरा नीचे रख दो, बच्चे बन जाओ, देखो बच्चों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। देंगे डांस करने में, ठीक है बच्चे? सभी राउंड बना लो, अपना हाथ पकड़ के राउंड बना लो सभी। प्रयास भाई हमको इसमें मदद करेंगे, ठीक है? गीत बजेगा और हम देखेंगे आज कौन कौन यहाँ बच्चे बन गए, ठीक है? अपना बड़प्पन भूल के बच्चे कौन कौन है, ठीक है? स्टार्ट करें, स्टार्ट, सभी रेडी? ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए भाई। आपका परिचित गीत है, आप सभी इस पर बहुत अच्छी तरह से खुश होके डांस कीजिए, खुशी मनाइए आज।
जाए इनमें ही ढूंढ रास्ता तू
न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी इन्हें है तुझे पाना है मैंने कहा तो वो सुन ले जमाना मेरे यारो
अपना दिल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई
हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो
अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी
जाते हुए
सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे
अभी आप सबसे एक निवेदन है आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए
सभी बच्चों का भी थैंक्स छोटे बच्चों का और बड़े बच्चों का भी सभी का थैंक्स
अभी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी जीवन में आपको कोई समस्या आए तो आप अभी वाली घड़ी याद कर लीजिएगा अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा यही मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए लास्ट पहलू पर हम आते हैं आध्यात्मिक पहलू आज इंसान हर क्षेत्र में जागरूक है लेकिन जहां पर आध्यात्मिकता की बात आती है कई बार लोग कहते हैं कि बहन जी आध्यात्मिक बातें जानने की जरूरत तो है लेकिन हम रिटायरमेंट के बाद ये सारी चीजों की जानकारी लेंगे क्योंकि तब तक हमारे पास समय नहीं है पर हम आपको बता दें आध्यात्मिकता को जीवन के जितनी कम उम्र में अपनाया जाए वो व्यक्ति उतना ही सौभाग्यशाली होता है आध्यात्मिकता को जानने सीखने समझने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार करने की जरूरत बोलिए है नहीं है है नहीं है नहीं है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी आप लोगों ने शायद सुना होगा आर्थर एश का नाम सुना है ही इज अ विंबलडन प्लेयर 1983 में उनको एक हार्ट की सर्जरी करानी पड़ी और बाय चांस उनको ब्लड देना पड़ा और वो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड था जिसके कारण उनको एड्स की बीमारी हो गई तो वर्ल्ड ओवर उनके जितने सारे फैंस थे उन्होंने उनको पत्र लिखे और उसमें से एक व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं इतनी खतरनाक बीमारी के लिए भगवान ने आपको क्यों चुना और आपको आश्चर्य होगा जानकर वो विंबलडन प्लेयर आर्थर एश का रिप्लाई क्या था किसको मालूम है किसी को मालूम है रिप्लाई क्या था आपको मालूम है उनका रिप्लाई ये था कि दुनिया में 5 करोड़ लोग टेनिस खेलने की इच्छा रखते हैं उसमें से प्रैक्टिकली कट हो जाते हैं 50 लाख ही खेल पाते हैं उसमें से भी और कट हो जाते हैं जो विंबलडन में एंट्री ले पाते हैं और अल्टीमेट ग्रैंड स्लैम में पहुंचते पहुंचते संख्या 5,000 की हो जाती है सेमीफाइनल्स में 4 लोग होते हैं फाइनल्स में 2 लोग होते हैं और विजेता, विजेता एक ही होता है। उसने प्रश्न पूछा कि जब मेरे हाथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का कप था तब तो मैंने भगवान से प्रश्न नहीं पूछा कि इसके लिए मुझे क्यों चुना गया। तो आज बुरे दिन में मैं क्यों पूछूं कि इसके लिए मुझे क्यों चुना गया, कहने का भाव है। कभी फेवरेबल सिचुएशंस आएंगी, कभी अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन हमारे अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए कि कोई भी बात आ जाए उसमें हम लाइफ को एंजॉय कर सके, कैसी भी बात आ जाए हम उसमें मुस्कुरा सके। और इसमें एक बहुत अच्छी बात जो हमें आध्यात्मिकता में सिखाई जाती है कि इंसान के साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं अपने ही कर्मों के बलबूते हो रहा है। आप सभी सहमत हैं? सहमत हैं? आज जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं वो हमारे ही अपने पिछले कर्मों का फल है। तो इसलिए यदि हमें अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, यदि हम चाहते हैं कि बुरी हालतों का हमें सामना न करना पड़े, या यदि हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जाने अनजाने भूल चूक हो चुकी है उसको मिटाया जाए, तो उसका तरीका क्या है? क्या तरीका है? क्या तरीका है? इसके तीन ही तरीके हैं और मैं समझती हूँ आप सभी इन तीन तरीकों को अपनाएंगे, 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 अपनाएंगे। नंबर वन, जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करने हैं, अपने आप को अच्छे अच्छे कर्मों में नियोजित करना है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आपको न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के प्रमाण हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हमने किसी के लिए अच्छा किया होगा तो रिटर्न में हमारा भी अच्छा हो ही जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी से हमारी अनबन है, आप कहेंगे हमने उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, ये प्रश्न मन में बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें ये समझ देती है यदि कोई कारण इस जन्म में दिखाई नहीं दे रहा है तो निश्चित कारण कहीं कहाँ है, कारण कहीं हमारे पिछले जन्मों में है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव अकाउंट जरूर है जिसके कारण हमें ये फेस करना पड़ रहा है। और यदि उसको हम खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। कोई हमें कितना भी परेशान कर रहा है, कोई हमें कितना ही हैरान कर रहा है, कोई हमारे साथ कितनी ही ज्यादती क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हमें उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। वो हमें परेशान कर रहा है और हमारे विचार क्या हो, भगवान आपका, बोलिए, भगवान आपका भला करे। हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल जीवन में करके देखा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल जीवन में करके देखा है। यदि सामने से नेगेटिव आ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो अकाउंट क्लोज हो जाता है और उसके मन में भी हमारे लिए फिर पॉजिटिव भावनाएं आनी शुरू हो जाती। और तीसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण, यदि हमें हमारे जन्मों के पापों को भस्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, अपना मन परमात्मा से जोड़े। योग को अग्नि कहा जाता है, योग वह अग्नि है जिसमें आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई दूसरा तरीका हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यदि अपने राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास के समय को, ड्यूरेशन को बढ़ा दें और इतनी शक्तिशाली परमात्मा की याद में बैठे तो आप ये यकीन करिएगा आपके जन्मों का पाप भस्म हो जाएगा और जो परेशानियां हैं उससे धीरे धीरे हमको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। हम यही मैसेज देते हुए इस सेशन को यही खत्म करते हैं। आशा है आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन जो कुछ भी आपको इस सेशन में संदेश मिला हम समझते हैं आप उसे साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं।
जाएंगे एक मिनट, उस परमात्मा पिता को थैंक्स देंगे फिर जाएंगे।
आप उसे साथ लेकर जाएंगे और परमात्मा को दिल से धन्यवाद करेंगे।
लास्ट में एक बात बस कहूंगी आप सभी से, खुशियों की बात है तो मुट्ठियों में बंद है जो खुशियाँ,
मुट्ठियों में बंद है जो खुशियां सब में बांट दीजिए, आपकी हो या मेरी हथेलियां तो एक दिन खाली ही जानी है। हमारे पास जो खुशियां हैं एक दूसरे को बांटिए, आपके आसपास जो बैठे हाथ मिलाइए और उनको ब्लेसिंग दीजिए कि आप जीवन में सदा खुश रहें, और अभी से शुरुआत कीजिए। देखिए चेहरे कितने खुशी से दिखाई दे रहे हैं। हम सभी उस परमात्मा पिता को एक मिनट थैंक्स करेंगे, फिर जाएंगे। शाम का आप सभी को याद हो, शाम को 4 बजे से हमारा सेशन शुरू होना है, और आज हमारे बीच आदरणीय शिवानी बहन जी आनी है, तो मुझे उम्मीद है सभी समय पर अपना स्थान ले लेंगे। ओम शांति, 1 मिनट याद करके उठेंगे।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला,